इस दिव्य उज्ज्वल रश्क हैं वो ठाकुर जी के हृदय में प्रकट होते, और जो ठाकुर जी के हृदय में भाव प्रकट होते वे श्री जी के हृदय में प्रकट होते, क्योंकि एक प्राण दो देह हैं। इसलिए सहचरी भी तदरूप ही हैं, उनके हृदय में भी युगल के भीतर के भाव ही उनके भीतर प्रकट होते हैं, अलग से कोई भाव प्रकट नहीं होते। तो अब देखिए यहां श्री जी के हृदय में भाव जगा, वे ब्रजांगनाएं हमारी अनुगता हैं, अनुचरी हैं, सहचरी हैं, वे प्रियतम के वियोग में अतिशय व्याकुल हो रही हैं, तो उनसे अधिक दूर रहना ठीक नहीं है, उनके निकट पहुंच जाना ठीक है। ऐसा विचार कर उन्होंने इच्छा प्रकट की, न पा रहे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, अब मैं एक पग नहीं चल सकती, आप जहां ले चलना चाहें आप हमें ले चलें। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो इस कंधे आरुह्यताम इति, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान विराजमान भय हैं, श्री जी ने चरण कमल उठाया है, इसी बीच भगवान अंतर्धान हो गए हैं। अपने श्री जी को एक लता के ऊपर ठाकुर जी ने विराजमान कर दिया है, और स्वयं ठाकुर जी अंतर्धान हो गए हैं। श्री किशोरी जी मूर्छित होकर के गिरी हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, कहाँ हो कहाँ हो, हे महाभुज कहाँ हो, हम आपकी दीनदासी हैं, आप अपनी नित्य सन्निधि का दर्शन हमें कराओ, अपने सान्निध्य का अनुभव कराओ। गोपियां दौड़ी भई आई हैं, किशोरी जी को अंक में लिया है, और इसके बाद वे पुनः श्री यमुना पुलिन पर आ गईं, क्योंकि जहां जो वस्तु खोई होती है खोजने पर वही प्राप्त होती है, इसलिए यमुना पुलिन पर ही भगवान अंतर्धान भये हैं। वहीं आकर के वे पुनः समवेता जगुह कृष्णम तदा गमन कांक्षिता, वे एकत्रित होकर के कृष्णम जगुह, कृष्ण को ही गाया, गीत गाया ये नहीं, कृष्णमेव जगुह, इसका तात्पर्य है गोपी गीत के रूप में गोपियों की जिह्वा से कृष्ण ही प्रकट हुए। कृष्णम जगुह, कृष्ण को गाया, ये श्री कृष्ण ही इनकी जिह्वा के ऊपर प्रकट भये। गोपी गीत साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान को अतिशय प्रिय है, इसका जो नित्य पाठ करते हैं उन्हें भगवान के दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। पुरी का राजा गजपति, महाप्रभु उसका आलिंगन नहीं करते, दर्शन भी नहीं करते, रजोगुणी का दर्शन महाप्रभु नहीं करते। अंत में वह व्याकुल हुआ, महाप्रभु हमारा कैसे स्पर्श करें, हमको कैसे दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो, वे अतिशय प्रेम में व्याकुल हो गए। तो संतों ने बताया कि तुम गोपी गीत का पाठ करो, महाप्रभु जी की कृपा मिल जाएगी। तो वे बड़े प्रेम से जयति तेधिकम गा रहे थे, महाप्रभु जी के कान में जैसे ही गोपी गीत पड़ा, हुंकार करते हुए दौड़े हैं और दौड़ करके गजपति को हृदय से लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया है, महासात्विक भाव अष्टसात्विक भाव राजा के शरीर में प्रकट हो गए, और प्रेम को प्राप्त करके वह कृतार्थ हो गया। भगवत प्रेम को प्रदान करने वाला यह दिव्य गीत है। आश्चर्य तो यह है, समवेता जगुह कृष्णम, एकत्रित होकर के उन्होंने गाया, और जब गाया तो सबके मुख से एक जैसे ही भाव निकले। ऐसा विवेक नहीं है कि एक श्लोक इस गोपी ने गाया, अमुक श्लोक अमुक गोपी ने गाया, एक साथ सबने गाया और एक जैसे ही भाव उनके मुख से निकले। इसका तात्पर्य सबकी वृत्ति एकमात्र श्री कृष्ण में लगी भई है, तो उनके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः उनके तन मन प्राण की सारी वृत्ति एक हो गई, और एक होकर के उन्होंने भगवान को पुकारा है। यह बहुत दिव्य गोपी गीत है। श्री गंगा जी के तट पर हम लोग बैठे हैं, श्री गंगा जी को गोपी गीत सुनावे। गोप्य ऊचुहु जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शस्वदत्र ही दैत दृश्यताम
दीक्षुतावकास प्रीधृता सवाहा त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात सर सरिस जोदर श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निग्न तो नेह किं वदा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजात् विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् रात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमी उषाम् संस्रतेर्भया करशरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम् वीरयोषिताम् निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किं करिष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणम् त्रेणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रणुकुचेशूनाः क्रन्धिरीक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुहियति रधरसि धुना प्याययश्वना तव कथामृतम् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम् रहसि संविदो याहृदि स्पृशाः कुहकनो मनाः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलत्रेणाङ्कुरै सीदती नाः कलिलताम् मनाः कान्त गच्छति दीन परीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहा ननम् विव्रदाव्रतम् गणरजस्वलम् दर्शयन्मुहु मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमम् च ते रमणनास्तने स्वल्पयादि सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरागवीस् मारणम् नृणा वितरवीरन ते धरामृतम् अटति यद्भवा नन्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घते त्यच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता कीतव योषिता कस्य जेन्निषि रहसि संविदम् प्रेच्छयोदयम् प्रहसिता ननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष धाम ते मुहूर्ति स्पृहा मुहीयते मनः ब्रज वनौ कषाम् व्यक्तिरंगते ब्रज निहंत्रलम् विश्वमंगलम् त्यजमानाक्नस् त्वत्स्पृहात्मनाम् स्वजन हृद्रुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम् स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वे कूर्पाधिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषा।
फिर कभी गीत गोपी गीत का भावार्थ समझावेंगे। गोपियों ने विलह व्यथित होकर के विलाप किया। इति गोप्यः प्रदायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में उत्तम स्वर में रुदन किया, भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए। उत्तम स्वर में गोपियों ने रुदन किया, भगवान के निमित्त जो रुदन है वह उत्तम स्वर में रुदन है। एक बार महाराज जी ने बताया, श्री स्वामी जी महाराज, भगवान कृपा सागर दया सागर करुणा सागर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हाय बेटा हाय पोता हाय धन हाय स्त्री हाय पुत्र कह करके रोने वालों के ऊपर दया सागर को दया नहीं आती। हे नाथ हे मेरे नाथ आप मेरे हो, हे नाथ आपके बिना अब जी नहीं सकता रह नहीं सकता, ऐसे व्याकुल होकर जो इन्हें पुकारते हैं बस वे ठाकुर जी के हृदय में दया का संचार हो जाता है, वे प्रेम में सराबोर कर देते हैं। तो भगवान के निमित्त जो रुदन है यही उत्तम स्वर का रुदन है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में उत्तम स्वर में रुदन किया और भगवान पीताम्बरधारी भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। भगवान ने गोपियों के प्रेम को अंगीकार किया है और उनके साथ दिव्य महारास किया है। तत्रारभित गोविंदो रास क्रीडा मनुव्रतैहि स्त्री रत्नैः अन्विता प्रीतैः अन्योन्यावद्वाहुभिः रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोदयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यम मन्येरन नभस्तावत विमान शत संकुलम दिवौकसाम सदा राणाम औत्सुक्या प्रतात्मनाम बलियानाम नूपराणाम किंकणीनाम च योषिताम सप्रियाणाम अभूच्छब्दो तुमलो रास मंडले तत्रातिशुभ सुशुभे ताभिर भगवान
देवकी सुतः मध्ये मणि नाम हेमा नाम महामरक स्त्री सिंह अन्यत्न पीटनीता प्रभुवी तो मंडित मंडल ईश्वर योग मध्य प्रहीतेनकंठ स्त्री निकट मन यम सन्मान
इस दिव्य उज्ज्वल रश की प्राप्ति के लिए रसिकाचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, नाम का जप करना चाहिए और धाम का आश्रय लेना चाहिए। अपनी ओर से पात्रता के अभाव में अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भगवान की ओर से, श्रीजी की ओर से, आचार्यों की ओर से स्वाभाविक रूप से जो रस भीतर प्रकट हो उतना आस्वादन कर लेना चाहिए। श्री ठाकुर जी कृपा करके किसी भाव और किसी रस से अपने शरणागत को वंचित नहीं रखते। समस्त रस और समस्त भाव अपने प्रेमी के हृदय में प्रकट कर देते, क्योंकि ठाकुर जी पूर्ण हैं, इसलिए वे अपने भक्त को अधूरा नहीं रखते, वे सब भाव और सब रस उसे दे देते हैं। जब जिस रस को वे चाहते हैं वह रस उसके चित्त में प्रकट कर देते हैं। गोपियां कोई दोहिनी पटक के भागी हैं, कोई अपने पतियों को भोजन करा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी तो जो बढ़िया सुंदर भोजन का थाल पतियों के लिए सजाया था वो तो गऊ के आगे रखे आई और गऊ की भूसा की कुंडी उठा के पति के सामने रख दिया। गऊ को साग ससुर को भूसा ऐसी मति बौर आई, ऐसी मति बौरी हो गई कि भोजन की थाली तो गऊ के सामने रख दी और गाय की जो सानी न्यार जो रखी थी वो उठा के ससुर और पति के सामने धर दिया। अरे वही बावरी है गई, ये कहा कर रही है, तब तक तो पटक के भागी। कोई लीप रही थी उसी समय भागी, कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी तो उसी समय वे चली। श्री मलुकदास जी ने भी इस लीला का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि नैनन पीक अधर दियो अंजन, नैनन पीक कहते इतनी विह्वल हो गई कि तांबूल खाई रही थी तो उनको ये नहीं लगा कि क्या आंख में आंजना चाहिए, तो नैनन पीक उसी पीक को निकाल के आंख में लगा लिया और अंजन डिब्बी में थी तो अधर दियो अंजन, होठ पर अंजन लगा लिया, काले होठ कर लिए। ऐसे वे व्याकुल होकर के श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, उनके वस्त्र आभूषण सब अस्त व्यस्त हो रहे थे, गले का आभूषण पैर में, पैर का आभूषण गले में, ऐसे उनके आभूषण हो रहे थे। देखो वे जैसी थी वैसी उठकर चल दी तो भगवान ने अपने कर कमल से उनका श्रृंगार किया और शूर्पणखा सज धज के गई तो भगवान ने उसकी नाक कान कटवा दिया लक्ष्मण जी के द्वारा। तो इसलिए भगवान के सामने बनने ठनने की कोशिश मत करो, जैसे हैं वैसे चल दो। गोपियों में इतना प्रेम है, वे श्रृंगार भी अपने लिए नहीं करती, वे श्रृंगार भी श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए करती हैं, वे श्रृंगार भी श्याम सुंदर को रिझाने के लिए करती हैं। गोपियां भगवान के निकट पहुंची, किसी गोपी के पति ने उनको अंतरग्रह में कुंडी लगाकर बंद कर दिया। वह गोपी अत्यंत विरह से पीड़ित हो उठी और उस विरह की वेदना में दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्त अच्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। प्रियतम के दुसह विरह को वह सहन नहीं कर सकी, उस विरह की अग्नि में उसके समस्त अशुभ जलकर भस्म सात हो गए और जब समस्त अशुभ भस्म हो गए तो भगवान का दिव्य आश्लेष उसे हृदय में प्राप्त हुआ। भगवान का जैसे ही हृदय में प्राकट्य हुआ और उसने भगवान का भुजाओं में भरकर आलिंगन किया तो उस आलिंगन से जो दिव्य आनंद प्रकट हुआ, सुख प्रकट हुआ, उससे क्षीण मंगला उसके जो पुण्य थे वे भी समाप्त हो गए, पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो गए। अत्यंत सुख मिला ना तो उस सुख में सारे पुण्य समाप्त हो गए। जब तक पुण्य और पाप ये दोनों सर्वथा समाप्त नहीं हो जाते तब तक देह बंधन समाप्त होता नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाए, पाप जितना बाधक है पुण्य भी उतना ही बाधक है, इसलिए पाप से बचना चाहिए। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्, शरणागत को पाप से बचना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, लेकिन पुण्य का लोभ भी नहीं करना चाहिए। उसे किसी लोक में जाना नहीं, कोई भोग चाहिए नहीं, तो पुण्य का लोभ क्या करे। सहज भगवान नाम का जप करता रहे, सहज भगवान से अनुराग करे, किसी पुण्य के लालच में उसे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का जो शरणागत भक्त है वह मुक्त हो जाता है सब प्रकार के बंधनों से, भगवान की शरण में जाते ही संचित भस्म हो जाता है, संचित समाप्त हो जाता है, क्रियमाण पवित्र हो जाता है और प्रारब्ध का वह भोग कर लेता है। अब थोड़ा सा जो क्रियमाण पवित्र हो गया, भगवत समर्पित हो गया, अब छोटा मोटा प्रारब्ध बचा तो उसे भोग लेता है, उसे भोगने में कोई उसे कष्ट नहीं होता। और फिर भी कथनचित कोई पुण्य पाप शेष रह जाए तो उस पुण्य पाप के द्वारा भगवान के भक्त का बंधन नहीं होता, क्योंकि भक्त का सर्वस्व, भक्त का आश्रय भगवान होते हैं। भगवान उसे समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त रखते हैं। जो भक्त का उपासक होता है, प्रशंसक होता है, उसमें उसके पुण्य चले जाते हैं, और जो संत की भक्त की निंदा करता है उसमें उसके पाप चले जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर के वह श्री ठाकुर जी को प्राप्त करता है। उस गोपी को दिव्य देह प्राप्त हो गई और वह दिव्य देह के द्वारा भगवान की सेवा में प्रथम ही उपस्थित हो गई। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि श्री कृष्ण को वह अपना प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, फिर उनका गुण प्रवाह कैसे समाप्त हो गया, देह बंधन कैसे छूट गया, संसार की निवृत्ति कैसे हो गई। यह प्रश्न वस्तुतः परीक्षित जैसे उत्तम कोटि के श्रोता का प्रश्न नहीं हो सकता, फिर भी परीक्षित ने यह प्रश्न किया। क्यों किया? कहते कलयुगी जीवों को दृष्टि में रख करके किया, उनके चित्त में संदेह नहीं है, लेकिन कलयुग में ऐसे अभागे भी होंगे जो ऐसे शंका संदेह करेंगे, तो उनको ध्यान में रख करके परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा। और इस प्रश्न का सुखदेव जी ने अभिनंदन नहीं किया, कहा उक्तम पुरस्ता दे तत्ते चैद्यस सिद्धिम यथागतः दुष्यन्न ऋषिकेशम किमुता झोक्ष प्रिया। ये उक्तम पुरस्तात ये कह करके इस प्रश्न के उत्तर देने में अरुचि दिखाई सुखदेव जी ने। अरे भाई, ये बात तो हमने तुमको पहले बता दी, ब्रह्म भाव की बात क्या है, भगवान में भाव होवे बस इतना ही आवश्यक है। यह कम से कम अपना प्रियतम तो मानती हैं, यह कम से कम अपना प्रियतम तो मानती हैं, शिशुपाल तो भगवान को मनुष्य मानने के लिए भी तैयार नहीं था, वो सवेरे से उठ के शाम तक गाली ही दिया करता था। तो द्वेष करने वाला, गाली देने वाला शिशुपाल, जब उसका देह बंधन समाप्त हो सकता है, वह मुक्त हो सकता है, तो प्रेम करने वाली गोपी का देह बंधन समाप्त हो गया तो इसमें तुम्हें कौन सा आश्चर्य है। काम क्रोध भय स्नेह एकता सौहार्द किसी भी भाव से भगवान में प्रेम करके तन्मयता को प्राप्त कर ले, और जैसे ही तन्मयता प्राप्त होगी उसका कल्याण हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि काम क्रोध भय इनके द्वारा भगवान में तन्मयता प्राप्त करें, इसका तात्पर्य ये नहीं है। ये भगवान के अनन्य भाव से चिंतन की महिमा का केवल यहां वर्णन किया जा रहा है। तन्मयता प्राप्त हो जाए केवल इस ये बात कही जा रही है। आदर्श जो चिंतन है वह तो अनुकूलता पूर्ण चिंतन ही आदर्श चिंतन है, क्योंकि अन्य भावों से किया गया जो चिंतन है उस चिंतन से मोक्ष तो हो जाएगा, लेकिन वर्तमान जीवन में क्या मिला। और प्रेमी को मरने के बाद मोक्ष नहीं, प्रेम का आस्वादन इसी शरीर से इसी जीवन में हो जाता है, तो प्रेम का सद्य फल उसे प्राप्त हो जाता है, उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इसलिए आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, अनुकूलता पूर्वक भगवान का अनुशीलन, इसी को भक्ति कहते हैं। प्रतिकूल भावों से भगवान के चिंतन को भक्ति नहीं कहा जा सकता, और प्रतिकूल चिंतन आदर्श भी नहीं हो सकता, अनुकूल भगवान का चिंतन ही आदर्श है। गोपियां भगवान के निकट पहुंची और भगवान ने गोपियों से कहा, श्री भगवान वाच स्वागतं वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। हे महाभाग ब्रज गोपियों, आपका स्वागत है, हम आपका कौन सा प्रिय करें, ब्रजस्य अनामयम ब्रू ही, ब्रज की कुशलता बताओ, ब्रज में कोई संकट तो नहीं आ गया, आगमन कारणम ब्रूत, आगमन का कारण भी बताओ, आपके आगमन का क्या कारण है। यहां सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण यहां गोपियों को महाभाग कह रहे हैं। महाभाग कौन है? ये श्रीमद् भागवत में महाभाग शब्द भी बड़े विशिष्ट स्थलों पर सुखदेव जी ने प्रयोग किया है। महाभाग कौन है? सारे संसार के संबंधों को तृण के समान ठुकरा कर जो भगवान के चरण कमलों की शरण में पहुंच जाए वो महाभाग है। और संसार की बड़े से बड़ी उपलब्धि किसी को प्राप्त हो जाए, सुखदेव जी के शब्दों में वो महाभाग ना तो भाग्यशाली है और ना महाभाग है। अम्बरीश को महाभाग कहते हैं सुखदेव जी, क्यों? कहते अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। और इन सबको तम मेने स्वप्न संस्तुति, ऐसा जो हो सारे संसार को स्वप्न के समान मानकर सर्वथा भगवान के चरणों की शरण में आ जाए, भगवान से संबंध दृढ़ता पूर्वक बना ले, वह जो है महाभाग है। शरीर और संसार से संबंध जोड़ने वाला अधमाधम है, भगवान से संबंध जोड़ने वाला ही महाभाग है। ये इसलिए इनको महाभाग कहा। वे सारे संसार के संबंधों को तृण के समान त्याग कर भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होकर आई हैं, इसलिए श्री सुखदेव जी ने उनको महाभाग कहा। आप अपने आने का कारण बतावें। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भिस्सु मध्यमा। हे देवियो, ये रात्रि बड़ी भयंकर है, ये जंगल का वातावरण है, बड़े हिंसक जीव यहां निवास करते हैं। तुम स्त्री हो, सहज भीरु स्वभाव वाली हो, तुम्हें यहां नहीं टिकना चाहिए। प्रतियात ब्रजम, तुम ब्रज में लौट जाओ, यहां मत रहो, क्योंकि तुम स्त्री हो, यहां इस प्रकार से तुम्हारा रहना उचित नहीं है। आप लोग कहेंगे कि अभी तो वृंदावन की बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन किया और शरद पूर्णिमा और उसकी कांति और वृंदावन की ऐसी शोभा है, यमुना जल की बड़ी शोभा हो रही, यमुना जी की यमुना पुलिन तो ऐसे लग रहा है मानो करोड़ों चंद्रमाओं का चूर्ण बनाकर बिछा दिया गया हो। और अभी भगवान कहने लगे कि रजन्येषा घोर रूपा, शरद पूर्णिमा की रात्रि घोर रूपा होती है क्या? बड़ी सुंदर होती शरद पूर्णिमा की रात्रि, फिर घोर रूपा क्यों कह रहे हैं? भगवान क्या धाम के स्वरूप की निंदा कर रहे हैं? ये संभव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है, भगवान ने कहा हे देवियो, रजनी एषा अघोर रूपा, हे देवियो ये रात्रि घोर नहीं है, बड़ी सुंदर सुहावनी शरद पूर्णिमा की रात्रि। अघोर सत्व निषेविता, वृंदावन में घोर सत्व नहीं है, सब रसिक हैं, प्रेमी हैं, प्रेमियों का निवास स्थान वृंदावन है। अघोर सत्व निषेविता, इसलिए प्रतियात ब्रजम न, ब्रजम न प्रतियात, अतएव ब्रजम न प्रतियात, इसलिए ब्रज में जाकर क्या करोगी? ब्रज माने गोष्ठ, ब्रजम गोष्ठम न प्रतियात। अब गैयान की धार कट गई, गैया न्यार खाए के पानी पी के आनंद से सोए रही है, अर्धरात्रि को समय है, अब तुम जाए के कहा करोगी गोष्ठ में? इसलिए ब्रजम न प्रतियात, यह स्थेयम यही डट जाओ। क्यों? बोले तुम सुमध्यमा हो। ये सुमध्यमा बड़ा प्यार भरा संबोधन है, तुम सुमध्यमा हो, सुंदर मनोहर मध्य भाग वाली हो, इसलिए तुम यहां डट जाओ, क्योंकि तुमको हमने जो संकेत किया है उसके पूर्ण होने का अवसर आ गया। ठाकुर जी ने तो उनसे यही कहा, लेकिन गोपियों ने, वे इतना व्याकरण पढ़ी लिखी नहीं थी कि हर जगह सवर्ण दीर्घ करके आकार को अनुभव करके, और वो कहती के रजनी एषा अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम न यह स्थेयम, ये तोड़ मड़ोड़ के अर्थ करना नहीं जानती थी। उन्होंने तो सीधे ही सीधा अर्थ लगाया कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि रात्रि बड़ी भयंकर है, घोर जीव जंतु हैं, और तुम लौट के चली जाओ। वे बिचारी व्याकुल हो गई, तो श्री ठाकुर जी रस लेने लगे, उनके उस भाव को देख करके भगवान ऐसा कहने लगे। भगवान का जो प्रेमी भक्त है उसके चित्त में किसी प्रकार की कोई चाह नहीं होती, यदि कोई कामना अपने प्रेमास्पद से है तो वह प्रेमी है, और जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे चाह से शून्य होते हैं, कामना से शून्य होते हैं। गोपियों में कोई कामना भगवान के प्रति नहीं, बस एक ही कामना, ये सुखी रहें, ये प्रसन्न रहें। तत्सुख सुखित्व की कामना, और कोई कामना गोपियों में, आत्म सुख की कामना रंच मात्र भी गोपियों के हृदय में नहीं है। लेकिन एक कामना प्रेमियों में अवश्य होती है, वो ये कि हमारा प्रेमास्पद प्रसन्न रहे, और दूसरी कोई कामना नहीं है। लेकिन हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके निकट जाएं तो कम से कम मुस्कुराकर हमारी ओर देख तो लें, हमसे मीठी मीठी दो बात तो कर लें। ये कामना प्रत्येक प्रेमी के हृदय, जिस किसी संसार में भी किसी से प्रेम है तो उसके प्रति भी ये कामना रहती है कि हम उसके पास जाएं तो मीठा दो बात बोल ले, हमारी ओर देख ले। और आप तो प्रेम करते हो और उसके निकट गए, उसने इधर आप सामने खड़े हो गए तो दूसरे से बात करने लग गया, इधर आए तो तीसरे से बात करने लग गया, फिर आपने कहा कि अरे हम इतनी देर से आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, आप तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे। अरे बोले हम बहुत व्यस्त हैं, फिर बात करेंगे। डांट दे तो उस प्रेमी के हृदय में क्या होगा? बहुत बड़ा वज्रपात होगा। हम तो इतना प्रेम करते हैं, हमारी ये हमको हमारी इतनी घोर उपेक्षा। और फिर प्रेमी को विधिवत न्योता देकर बुलाया जाए, और न्योता देकर बुलाने के बाद ठीक पंगत के समय कहा जाए आप कैसे पधारे, अच्छा अब आप जाइए, हमको पंगत करानी है, और भी हमारे यहां उत्सव है करना है, आप पधारिए। यदि कोई इज्जत वाला होगा ना तो जीवन में भूल के नहीं जाएगा, चाहे वो भले ही घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, फिर वहां नहीं जाएगा। ठाकुर जी ने अपनी दूती बंसी के द्वारा नाम ले लेकर गोपियों को बुलाया है, अब बुलाने के बाद कहते आप कैसे पधारी हो, पहले बुलाया, बुलाने के बाद कहते आप कैसे पधारी, अब वृंदावन का दर्शन कर लिया, अब ठंडे ठंडे पधारो यहां से। भगवान ने उनके प्रेम का प्रत्याख्यान क्यों किया? उसका मूल कारण यही है कि भगवान रसिक जनों का परम उपकार करने के लिए गोपियों के अंतस्थल में छिपा हुआ जो दिव्य प्रेम है, दिव्य अनुराग है, दिव्य प्रणय है, उसको भगवान प्रकट कराना चाहते हैं। जब तक तिजोरी में चाबी नहीं लगाई जाए तब तक उसके रत्न बाहर थोड़ी प्रकट होंगे, तो मानो प्रत्याख्यान रूपी चाबी लगा करके उनके हृदय रूपी तिजोरी में जो बड़े सुंदर सुंदर श्री कृष्ण प्रेम के मणि छिपे हुए थे, उद्गार छिपे हुए थे, उनको भगवान ने प्रकट कराया। श्रीमद् भागवत का बड़ा दिव्य गीत है प्रणय गीत, ये भगवान ऐसा न कहते तो गोपियों के प्रेम को कौन पहचानता, अद्भुत गोपियों का प्रेम है। भगवान ने कहा कि देखो देवियों, तुम्हारे पिता माता भाई सब खोज रहे हैं, और तुमने वृंदावन का दर्शन कर लिया, यमुना जी का दर्शन कर लिया, अब तुम जाओ यहां से। यदि तुम हमारे स्नेह से नियंत्रित होकर के आई हो तो कोई बात नहीं, सब प्राणी हमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि सबका प्राण सबका आत्मा तो मैं ही हूं। नारी का धर्म है अपने पति की छल कपट त्याग करके सेवा करना, पति चाहे वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, स्त्री का कर्तव्य है पति का त्याग न करे। और यदि तुम कह रही हो कि हम तो तुम्हारे प्रेम से खिंची भई चली आई, तो कोई बात नहीं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मई भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेणो प्रतियात ततो ग्रहण, मेरी कथा सुनने से, दर्शन से, ध्यान से, मेरे नामों का कीर्तन करने से जैसा प्रेम प्रकट होता है वैसा प्रेम निकट रहकर प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान ने बात तो कही है लेकिन ये बहुत सही बात है, सही इसलिए इसको कहा गया कि जब वस्तु अत्यंत निकट होती है तो उसका अनादर हो जाता है, क्योंकि सुलभ हो गई ना, अति सुलभ हो गई तो उसकी महिमा हम भूल गए। वो लोग पैदल चल के मारवाड़ से गंगा जी आते, पैदल चल के इतना कष्ट भोग करके कहां से मारवाड़ से गंगा जी आते, वो कितने लोग तो साष्टांग करते भाई गंगा जी आते, यहां गंगा में स्नान करते, यहां से गंगा जली लेके जाते। तो हमने सुना है कि गंगा जली के गीत जब वहां गाते तो कितनी बार तो गंगा की उस गंगा जली में हिलोरे उठने लग जाती, तरंग उठने लग जाती, वो इतना उनका भाव। और गंगा के किनारे रहने वाले लोग वो तनिक भी मर्यादा नहीं रखते, वो कहो उसी में गंदगी करने लग जाएं, कहो उसी में कुल्ला करने लग जाएं, कहो उसी में जूता चप्पल धोने लग जाएं। क्यों? उन्हें अतिशय जो सन्निकर्ष प्राप्त है कि वो अनादर का कारण बन गया। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संत के निकट नहीं रहना चाहिए, भगवान के निकट नहीं, भगवान के ही निकट रहना चाहिए, सत्पुरुषों के निकट ही रहना चाहिए, लेकिन उनकी उपेक्षा पूर्वक उनका सेवन नहीं करना चाहिए। सावधानी पूर्वक, अतिशय आदर पूर्वक उन महापुरुषों का सेवन करना चाहिए। इतना आदर महापुरुषों के प्रति होना चाहिए, उनकी सामान्य क्रिया भी हल्के स्तर से नहीं देखी जानी चाहिए। इतना सावधान रहेगा तो लाभ लेगा। वे हंस रहे हैं, वे बोल रहे हैं, वे किसी से कुछ कह रहे हैं, तो वह भी कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि वे हल्के स्तर के महापुरुष नहीं हैं, वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उनके मुख से जो कुछ प्रकट हो रहा है उसमें हमारा कुछ न कुछ विशेष लाभ छिपा हुआ है, ऐसा विचार करके यदि संग करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। और ये सोच ले कि भाई इनका तो काम है दूसरों को कुछ न कुछ सुनाना, हमें सबके सुनने से क्या मतलब, अथवा हमें मानने से क्या मतलब, हमारा तो जो काम है सो हम कर देते हैं। ऐसा भाव यदि कोई बना के रखे अच्छे से अच्छे महत्पुरुष के चरणों में पहुंचने के बाद, तो भी उनका लाभ नहीं ले पाए। इसलिए प्रमाद शून्य हो करके अतिशय श्रद्धा पूर्वक उपास्य में दोष का दर्शन बिल्कुल भी न करे, दोष दृष्टि का सर्वथा त्याग करते हुए अतिशय आदर पूर्वक सेवन करे तो बहुत शीघ्र काम बन जाए। सन्निकर्षो ही मर्त्याणाम अनादरण कारणम, सन्निकर्ष मनुष्यों के लिए अनादर का कारण बन जाता है। इसलिए सन्निकर्ष हो ये भगवान की विशेष कृपा, लेकिन हम अनादर से बचें। अनादर यदि हो गया तो ये बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। सावधान होकर के सेवन करना चाहिए, इसका तात्पर्य यही है। भगवान ने कहा देखो देवियों, एक पतिव्रता का बालक आग के कुंड में गिर गया, और पतिव्रता का पति जो है उसकी गोद में सिर रख करके सोया था। मेरा पति न जग जाए इसके लिए उस पतिव्रता ने उस बालक को आग की लपटों से नहीं उठाया। पतिव्रता के तेज से हतप्रभ होकर, पतिव्रता के भय के कारण सबको जलाने वाले अग्निदेव शीतल हो गए, लपटों में भी बालक सुरक्षित बच गया। पतिव्रता की इतनी महिमा, सूर्य चंद्र भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते, ये पतिव्रता की महिमा है। ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। गोपियों के हृदय में अपार वेदना भई। दो श्लोकों में श्री गोपियों की दशा का वर्णन करते हैं, एक श्लोक में विशेष उनके भाव का वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। कृत्वा मुखान्यवसुच श्वसनेन शुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुंकुमानि तस्थुर मृजन्त्य उरुदुख भरास्म तूष्णी। शोक के कारण उनके मुख कमल मुरझा गए, गरम गरम श्वास प्रश्वास से उनके अधर सूख गए, वे अपने पैर के अंगुष्ठ से नख से पृथ्वी को कुरेदने लग गईं, उनके नेत्रों से अविरल अस्त्र धारा प्रवाहित होने लगी, उनके नेत्र प्रांत में लगा हुआ कज्जल बह बह करके कपोलों पर आने लग गया, वे अत्यंत प्रेम में व्यथित हो गए। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है, अधर सूखने का भाव तो ये है कि गोपियां मानो अपनी मूक विरह की भाषा में कह रही हैं, हे प्राण धन, हे जीवन धन, अभी तो आपके विरह में केवल होठ सूखे हैं, होठ जले हैं विरहानल से, यदि आपने हमें अंगीकार नहीं किया तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे। चरणे न भुवम लिखंत्यः, पैर के अंगुष्ठ से पृथ्वी को कुरेद रही हैं, मानो वे भूदेवी से कह रही हैं, हे भूदेवी, रामावतार में आपने अपने में श्री किशोरी जी को जगह दे दिया, इस अवतार में भी श्याम सुंदर हमें ठुकरा रहे हैं, अब हम लौटकर संसार में तो जा नहीं सकती, आप फट जाएं और हम आप में जीवित ही समाहित हो जाएं। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, उस अश्रुधारा का भाव यह था कि हे प्रियतम, अभी तो यह आंसुओं की धार बह रही है, अब आंसुओं की प्रबल बाढ़ आ जाएगी और ऐसी भयंकर आंसुओं की बाढ़ आएगी कि ये ब्रज विरह के समुद्र में डूब जाएगा। इस डूबते हुए विरह के समुद्र में ब्रज को आप बचावें, इंद्र के कोप से तो आपने गिरिराज उठाकर ब्रज की रक्षा कर ली, लेकिन इन गोपियों के विरह के आंसुओं से बने समुद्र से आप अपने ब्रज को कैसे बचावेंगे? यदि आपने हमें नहीं बचाया तो निश्चित ही यह विरह के आंसुओं में हम डूब करके हमारा विनाश हो जाए, ब्रज डूब जाएगा। आप तो ब्रज की रक्षा करने के लिए प्रकट भए हैं। आप लोग कहेंगे क्या ऐसे भी आंसू जिनमें ब्रज डूब जाए, क्या ये अतिशयोक्ति है? नहीं, यथार्थ है। भगवत प्रेम अतिशय दिव्य है, संसार के लोग क्या समझें प्रेम की बात को। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते, श्री जगन्नाथ जी में गरुड़ स्तंभ कहाँ है, जहां महाप्रभु जी के अंगूठे अंगुलियों का चिन्ह बना है, और वर्णन मिलता है कि वहां खड़े होकर दर्शन करते तो नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी छूटती और जगन्नाथ जी के मंदिर में जो गर्त है वो आंसुओं से भर जाता। अभी आप सवेरे सुन चुके हैं करमेती बाई, आंसुओं की धार यमुना जी में मिल रही है, और कहां तक कहा जाए, प्रियादास जी महाराज ने हरिशरणम श्री प्रियादास जी महाराज ने निषाद राज गुह के संबंध में तो यहां तक कहा है कि पाछे बहे लहू धार है, आंसू आना बंद हो गए, नेत्रों से रक्त की धार बहने लग गई। ये भगवान के प्रेमियों की बात बड़ी निराली और विलक्षण होती है, इसलिए अविश्वास नहीं करना चाहिए। कज्जल की रेखा बन गई है, इसका तात्पर्य क्या है? अरे इसका तात्पर्य यह है कि मानो वे ब्रज गोपियां कह रही हैं कि रेखा तो बन चुकी है, अब आरा चलाने की देर है, आरा चलवा दीजिए और मैं खंड खंड हो जाऊं, लेकिन अब हम आपको त्याग कर जा नहीं सकती। गोपियों ने भगवान को पुकारा है, मैवम विभोरहति भवान गदितुम निसंसम संत्यज्य सर्व विषयास तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मिमुक्षून। हे विभो, इतनी कठोर वाणी आप मत कहिए, संपूर्ण विषयों का त्याग करके हम आपकी चरण कमलों की शरण में आई हैं, आपकी भक्ता हैं। हे दुर्वग्रह, हे हठी प्रियतम, आप हमारा त्याग न करें। जैसे आदि पुरुष भगवान अपने प्रपन्नों का त्याग नहीं करते, ऐसे ही आप हमारा त्याग न करें। आपने जो कहा है, पति की सेवा करना धर्म है, पति का तिरस्कार करना अधर्म है, हम पति का तिरस्कार कहां कर रही हैं? प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा, जितने शरीरधारी हैं उन समस्त शरीरधारियों की प्रिय आत्मा आप ही तो हैं, तो आपसे प्रेम करना वह पातिव्रत धर्म की सफलता है, पातिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं है। इसलिए वर्णन मिलता है कि ब्रज गोपियों की चरण रज को सती सावित्री अरुंधति आदि जो महासतियां हैं वे भी गोपियों की चरण रज को मस्तक पर धारण करती है। क्यों? कहते हमारा जो पातिव्रत है केवल लौकिक पति तक सीमित है, लेकिन गोपियों का पातिव्रत वह परम पति श्री कृष्ण में है, इसलिए उनका पातिव्रत हमसे भी श्रेष्ठ है। वे नमस्कार करती हैं, हे भगवान हम आपसे ही पूछते हैं, पति पदवाच्य शरीर है कि शरीरी आत्मा? यदि ये कहा जाए कि पति पदवाच्य शरीर है तो मृत्यु के बाद शरीर तो सामने पड़ा है, फिर स्त्री विधवा क्यों हुई? इसका मतलब शरीर पति नहीं, शरीर के भीतर विराजमान अंतर्यामी रूप से जो भगवान है वही पति है, पति पदवाच्य है। इसलिए आपसे प्रेम करना तो पातिव्रत की सफलता है। हे भगवान, एक पतिव्रता नारी, उसके पति परदेश चले गए, वो अपने पति की मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी, तब तक उसके पति आए, कुंडी खटखटाई, देवी द्वार खोलो। तो भगवान आप ही बतावे, अब तो उसके दो पति हो गए, एक तो मिट्टी का पति, एक असली पति, अब क्या करे? इधर पूजा छोड़े कि उसका आदर करे? यह सुनकर के भगवान हंसने लगे, बोले देवी हो, जब तक असली पति नहीं आया था तब तक मिट्टी की मूर्ति की पूजा थी, असली पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति की क्या जरूरत? गोपियों ने कहा प्रभु न्याय आपने कर दिया, जब तक आप सच्चिदानंद घन परम पति प्राप्त नहीं हुए थे तब तक इन हाड़ मास के पुतलों की जरूरत थी, तब तक इन हाड़ मास के पुतलों की मिट्टी की मूर्तियों की हमने खूब प्रेम से पूजा करी, और अब आपकी प्राप्ति हो गई फिर भी हम संसार से प्रेम करें? भगवान ने इनके प्रेम का आदर किया। मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है और प्रकरण भी बहुत विस्तृत और गंभीर प्रकरण है, इसलिए केवल स्मरण मात्र ही करेंगे। भगवान ने उन गोपियों के साथ महारास रासक क्रीड़ा की। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मा रामोऽप्यरी रमत। आत्मा राम भगवान ने उनके साथ रमण किया। यह भगवान का रास है और रास के बाद भगवान अंतर्धान भए और फिर महारास है और महारास के बाद फिर नित्य रास है, अर्थात उस रास में कहीं कोई बाधा नहीं है। भगवान पहले गोपियों को प्राप्त भए हैं, फिर बिछुड़ गए हैं उनके प्रेम को पुष्ट करने के लिए, फिर भगवान ने महारास किया। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनालवन नरम नखाग्रपातै श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने उनके साथ रमण किया है। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया है, उनके सौभाग्य के मद को देख करके भगवान ने विचार किया और भगवान उनके मद का प्रशमन करने के लिए अंतर्धान हो गए हैं। जैसे ही अंतर्धान हो गए हैं गोपियां विलाप करने लगी हैं। यहां तत्रैवान्तर धीयत, वहीं अंतर्धान हो गए, इसका तात्पर्य कि कहीं अन्यत्र गए नहीं। कुछ संत तो ऐसा भी कहते हैं कि ठाकुर जी बले नटखट नाचते नाचते अपने पीताम्बर को ओढ़ लिया, घूंघट काढ़ लिया और गोपी बन गए। तत्रैव अंतर धीयत, उन्हीं गोपियों के यूथ में ही वे विलीन हो गए, उसी में अंतर्धान हो गए और उसी में धीरे से किशोरी जी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गए। और फिर जब आए तो कैसे आए? बोले फिर पीताम्बर ओढ़ के फिर आ गए और आकर के तासाम आविर्भूत छौरी, कहीं से आए नहीं, तासाम मध्य एव आविर्भूत, उनके मध्य ही प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान अपने प्रेमियों से एक पल के लिए भी अलग होते नहीं हैं, वे सतत प्रेमियों के निकट ही रहते हैं। वे साथ ही साथ रहकर विलाप भी कर रहे थे, उनकी क्रिया को भी देख रहे थे, और कहां तक कहें वो गोपी गीत गाते समय भी वहीं थे, गोपी गीत भी गा रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अशोक पुन्नाग चंपक तुलसी मालती जूही चमेली आदि सबसे पूछती हैं भगवान का पता, अंत में भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं और उन्हें श्री राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। उनको देख करके वह उस रज को धारण करने लग जाती हैं। श्री जी का यहाँ श्रृंगार किया है, यहाँ केशव प्रसाधन किया है और यहाँ वेणी गूंथन लीला भई है। स्वामी जी ने इस रास के भाव को वेणी गूंथ कहा कोई जाने वर्णन किया है, ये वेणी गूंथन लीला, इनसे बढ़िया वेणी गूंथने की कला और किसी में है नहीं। ये बड़ी सुंदर वेणी गूंथना जानते हैं, ऐसी सुंदर भगवान ने वेणी गूंथी है, भगवान ने रमण किया उनके साथ। इसके बाद वे गोपियां अतिशय व्याकुल होकर आगे बढ़ी हैं। तब तक श्री जी ने लीला की है, वस्तुतः भगवान के हृदय में जो कुछ भाव प्रकट होते हैं वे प्रथम श्री जी के हृदय में प्रकट होते हैं, और श्री जी के हृदय में जो प्रकट होते हैं वो ठाकुर जी के हृदय में प्रकट होते, और जो ठाकुर जी के हृदय में भाव प्रकट होते वे श्री जी के हृदय में प्रकट होते, क्योंकि एक प्राण दो देह हैं। इसलिए सहचरी भी तदरूप ही हैं, उनके हृदय में भी युगल के भीतर के भाव ही उनके भीतर प्रकट होते हैं, अलग से कोई भाव प्रकट नहीं होते। तो अब देखिए यहां श्री जी के हृदय में भाव जगा, वे ब्रजांगनाएं हमारी अनुगता हैं, अनुचरी हैं, सहचरी हैं, वे प्रियतम के वियोग में अतिशय व्याकुल हो रही हैं, तो उनसे अधिक दूर रहना ठीक नहीं है, उनके निकट पहुंच जाना ठीक है। ऐसा विचार कर उन्होंने इच्छा प्रकट की, न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, अब मैं एक पग नहीं चल सकती, आप जहां ले चलना चाहें आप हमें ले चलें। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो इस कंधे आरुयताम इति, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान विराजमान भय हैं, श्री जी ने चरण कमल उठाया है, इसी बीच भगवान अंतर्धान हो गए हैं। अपने श्री जी को एक लता के ऊपर ठाकुर जी ने विराजमान कर दिया है, और स्वयं ठाकुर जी अंतर्धान हो गए हैं। श्री किशोरी जी मूर्छित होकर के गिरी हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, कहाँ हो कहाँ हो, हे महाभुज कहाँ हो, हम आपकी दीनदासी हैं, आप अपनी नित्य सन्निधि का दर्शन हमें कराओ, अपने सान्निध्य का अनुभव कराओ। गोपियां दौड़ी भई आई हैं, किशोरी जी को अंक में लिया है, और इसके बाद वे पुनः श्री यमुना पुलिन पर आ गईं, क्योंकि जहां जो वस्तु खोई होती है खोजने पर वहीं प्राप्त होती है, इसलिए यमुना पुलिन पर ही भगवान अंतर्धान भये हैं। वहीं आकर के वे पुनः समवेता जगुह कृष्णम तदा गमन कांक्षिता, वे एकत्रित होकर के कृष्णम जगुह, कृष्ण को ही गाया, गीत गाया ये नहीं, कृष्णम एव जगुह, इसका तात्पर्य है गोपी गीत के रूप में गोपियों की जिह्वा से कृष्ण ही प्रकट हुए। कृष्णम जगुह, कृष्ण को गाया, ये श्री कृष्ण ही इनकी जिह्वा के ऊपर प्रकट भये। गोपी गीत साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान को अतिशय प्रिय है, इसका जो नित्य पाठ करते हैं उन्हें भगवान के दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। पुरी का राजा गजपति, महाप्रभु उसका आलिंगन नहीं करते, दर्शन भी नहीं करते, रजोगुणी का दर्शन महाप्रभु नहीं करते। अंत में वह व्याकुल हुआ, महाप्रभु हमारा कैसे स्पर्श करें, हमको कैसे दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो। वे अतिशय प्रेम में व्याकुल हो गए। तो संतों ने बताया कि तुम गोपी गीत का पाठ करो, महाप्रभु जी की कृपा मिल जाएगी। तो वे बड़े प्रेम से जयति तेधिकम गा रहे थे, महाप्रभु जी के कान में जैसे ही गोपी गीत पड़ा, हुंकार करते हुए दौड़े हैं और दौड़ करके गजपति को हृदय से लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया है, महासात्विक भाव अष्टसात्विक भाव राजा के शरीर में प्रकट हो गए और प्रेम को प्राप्त करके वह कृतार्थ हो गया। भगवत प्रेम को प्रदान करने वाला यह दिव्य गीत है। आश्चर्य तो यह है, समवेता जगु कृष्णम एकत्रित होकर के उन्होंने गाया, और जब गाया तो सबके मुख से एक जैसे ही भाव निकले। ऐसा विवेक नहीं है कि एक श्लोक इस गोपी ने गाया, अमुक श्लोक अमुक गोपी ने गाया, एक साथ सबने गाया और एक जैसे ही भाव उनके मुख से निकले। इसका तात्पर्य सबकी वृत्ति एकमात्र श्री कृष्ण में लगी भई है। तो उनके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः उनके तन मन प्राण की सारी वृत्ति एक हो गई और एक होकर के उन्होंने भगवान को पुकारा है। यह बहुत दिव्य गोपी गीत है। श्री गंगा जी के तट पर हम लोग बैठे हैं, श्री गंगा जी को गोपी गीत सुनावे। गोप्य ऊचुहु जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम् दीक्षुतावकाश धृता सवाहाम विचिन्वते शरदुदास साधु जात सरिस जोदर श्री मुषा दृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निग्न तो नेह किं वदा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना रात मंद्रे विखन सार्चितो विश्वगो सख उदेवान सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णि धुर्यते चरणमी उषां संस्रतेर भया सरोरुहम कांत कामदम सिरसी धेहि नाहा श्री कर ग्रहम वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत
किं करिष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणम् त्रेण चरानुगम श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रेणुकुचेशूनाः क्रन्धिरीक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुहियति रधरसी धुना प्याययश्वना तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो याहृदि स्पृशाः कुहकनो मनाः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलत्रेणाङ्कुरै सीदती नाः कलिलताम् मनाः कान्त गच्छति दीन परीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहा ननम् विव्रदाव्रतम् गणरजस्वलम् दर्शयन् मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमण नाहस्तने स्वर्पयादि सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर रागवीस मारणम नृणा वितर वीरन ते धरामृतम अटति यद् भवा नन्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कीतव योषिता कस्त्यजेन्निषि रहसि संविदम् प्रेच्छयोदयम् प्रहसिता ननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते मुहूर्ति स्पृहा मुह्यते मनः ब्रज वनौकशाम् व्यक्तिरङ्गते ब्रजनिहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्नस् त्वत्स्पृहात्मना स्वजन हृदृजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम् स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधि महिकर्कशेषु तेनाटवे मटसि तद्व्यथते न किंस्वे कूर्पाधिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषा। फिर कभी गीत गोपी गीत का भावार्थ समझावेंगे। गोपियों ने विलह व्यथित होकर के विलाप किया। इति गोप्यः प्रदायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में उत्तम स्वर में रुदन किया, भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए। उत्तम स्वर में गोपियों ने रुदन किया, भगवान के निमित्त जो रुदन है वह उत्तम स्वर में रुदन है। एक बार महाराज जी ने बताया, श्री स्वामी जी महाराज,
भगवान कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाय बेटा, हाय पोता, हाय धन, हाय स्त्री, हाय पुत्र कह करके रोने वालों के ऊपर दया सागर को दया नहीं आती। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरे हो, हे नाथ आपके बिना अब जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, ऐसे व्याकुल होकर जो इन्हें पुकारते हैं, बस वे ठाकुर जी के हृदय में दया का संचार हो जाता है, वे प्रेम में सराबोर कर देते हैं। तो भगवान के निमित्त जो रुदन है, यही उत्तम स्वर का रुदन है। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा में उत्तम स्वर में रुदन किया और भगवान पीताम्बरधारी भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। भगवान ने गोपियों के प्रेम को अंगीकार किया है और उनके साथ दिव्य महारास किया है। तत्रारभित गोविंदो रास क्रीडा मनोव्रतैहि स्त्री रत्नैः अन्विता प्रीतैः अन्योन्यावद्वाहुभिः रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोदयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यम मन्येरन नभस्तावत विमान शत संकुलम दिवौकसाम सदा राणाम औत्सुक्या प्रतात्मनाम बलियानाम नूपराणाम किंकणीनाम च योषिताम सप्रियाणाम अभूच्छब्दो तुमलो रास मंडले तत्राति शुभ सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा पादन्यासैर भुज विदुति सस्मितैर भ्रूविलासै भज्जन मध्यै चलकुचपटै कुंडलैर गंडलोलै सुज्यन मुख्यः कवर रसना ग्रंथयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडितैवता मेघ चक्रे विरेजुः। भगवान ने उन गोपियों के साथ दिव्य रास विलास किया। ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत भगवान ने यह दिव्य लीला की। ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्याः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं ब्रजवधो विरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। जो दिव्य भगवान की इन जो धीर पुरुष, देखो अचिरेण धीरा, धीर पुरुष किसे कहते हैं? उपनिषद में धीर का लक्षण है जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को बाह्य विषयों से बटोर कर अंतर्मुख कर लिया हो उसे धीर कहते हैं। तभी धीरा उदाहरता उसे धीर कहते हैं। ऐसा जो धीर पुरुष है जिसने संसार से अपने मन को मोड़कर भगवान में लगा रखा है, ऐसा जो धीर पुरुष भगवान की इन लीलाओं का बार बार श्रवण करता है, वर्णन करता है श्रद्धा पूर्वक, उसे प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है और हृदय के जो कामादिक विकार हैं वे सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान, रासेश्वरी श्री राधा रानी की, समस्त ब्रज गोपीन की जय जय श्री राधे। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया है, शंखचूड़ का उद्धार किया है, गोपियां भगवान को युगल गीत से पुकारती हैं, अरिष्टासुर आया है वृषभ के रूप में, भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया है, व्योमासुर का उद्धार किया है और श्री अक्रूर जी महाराज पधारे हैं भगवान को लेने के लिए। गोपियों ने अत्यंत विरह से व्यथित होकर के विलाप किया है। भगवान ने गोपियों को उनके तत्सुख सुख रूप गोपी धर्म का और बोध कराया है। और इसके बाद भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचे हैं। अक्रूर घाट पर अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया है। मथुरा पहुंच करके मथुरा वासियों को कृतार्थ किया है, रजत का उद्धार किया है, माली के ऊपर कृपा की है, दर्जी के ऊपर कृपा की है, कुब्जा के ऊपर कृपा की है, और भगवान ने कुवल्यापीढ़ हाथी का वध किया है। इसके बाद सल तो सल मुष्टिक चाणूर का भगवान ने वध किया है, और उच्च सिंहासन पर बैठे कंस को ऊपर से उठा के धड़ाम से पटक दिया है। बोलो कंस ने कंदन भगवान की। कंस का संस्कार कराया है, उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाया है, और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। वसुदेव देवकी को प्रेम पूर्वक भगवान ने कृतार्थ किया है, और इसके बाद भगवान सांदीपन महर्षि के यहाँ एक वर्ष में संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन करके दक्षिणा में मृत गुरुपुत्र को वापस करके पुनः भगवान मथुरा पधारे हैं। मथुरा में भगवान को विश्राम करने दीजिए। शेष चरित्रों का कल स्मरण किया जाएगा।